पेज नंबर 122। दूसरे दिन प्रातःकाल तमसा तट उदुम्बर की एक शाखा पर दो क्रौंच पक्षी बैठे हैं और परस्पर चोंच से चोंच गर्दन से गर्दन मिला रहे हैं। ये पंछी साधारण क्रौंचों जैसे नहीं लगते। क्रौंच इतने सुंदर चित्र विचित्र कहाँ होते हैं? ये नील मराल हैं या कश्यप समुद्र के नील सुपर्ण हैं या किरातों के पीत सागर के अनाम मरकत पाखी हैं जो पीत सागर से इरावदी के स्रोत तक शरद और वसंत का संदेश बांटते चलते हैं। शायद ये पंछी नहीं है, कोई देवता युग्म है जो पंछी रूप धरकर मर्त्य क्रीड़ा के लिए उतरा है। माणिक वाणी लाल चोंच गर्दन और डैने शुद्ध मरकत नील शेष अंग मुक्ता वाणी उज्ज्वल। ऐसे सुंदर पंछी तो कभी जन्मे ही नहीं थे। इस प्रकार सोच रहा है एक ब्राह्मण जो कुछ दूर पर बैठा है सावित्री का जप करने और देख रहा है इस जोड़े को। जितना ही देखता है उतना ही मुग्ध होता जाता है। वह ध्यान के लिए आंखें मूंदता है तो यह काम मोहित जोड़ा ही दिख जाता है। आज उसका सावित्री मंत्र विफल है। 24 अक्षरों वाला छंद आज रह रहकर अटक जाता है, ठीक से वह जप नहीं पा रहा है। उधर अद्भुत चोंच और पंखों वाले दोनों पक्षी परस्पर प्यार में रत हैं। शायद ये दोनों भटक गए थे, दोनों कई दिन से बिछड़े थे। कई दिनों तक नदी के आर पार रहे। नदी एक पास, एक नियति, एक अनिवार्य विरह व्यथा बन गई और ये कई रात परस्पर बिछुड़े रहे। अचानक संयोगवश मरुद गणों की कृपा से ये पुनः नदी के मझधार में एक दूसरे के सम्मुख पड़ गए। आँखों की पहचान की पूर्णिमा उतर आई और प्रेमालोकित मन के साथ ये लौट आए तट पर और उदुम्बर शाखा पर बैठकर एक दूसरे को प्यार करने लगे, एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछने लगे। ब्राह्मण को स्मरण आ रही है एक ऋचा, जैसे दिवस उदय की बेला में चक्रवाक एक दूसरे की ओर तृप्ति भाव से उड़ते आते हैं, वैसे ही हे भगवती उषा हमारे निकट तुम आओ, वैसे ही हमारे निकट सत वर्षों तक आती रहो। ब्राह्मण के ओंठ ओम तत्सवितुर्वरेण्यम बुदबुदा रहे हैं और मन पड़ रहा है प्रणय का उपनिषद। हाथ की उंगलियां एक ही रुद्राक्ष पर स्तब्ध हो गई हैं जब वहीं रुक गया है। नदी के तट पर एक तगर गाछ है। अचानक उसकी शाखा पर एक फूल फूटता है, चारों ओर सुगंध फैल जाती है और उस फूल के चारों ओर से चारों भुजाओं में वेष्टित करता हुआ एक मलय पवन का झकोरा उपस्थित हो जाता है और फूल के कानों में कहता है, तुर तुर तुत, जुट आए ना यहां भी, बेमतलब पवन वेग से पीछे पीछे भागे आए। तो तुमने क्या समझा था कि तुम फूलों में छिपी रह जाओगी? तुम जो मेरे ही हृदय की एक सांस हो, क्यों मेरी बन्नी, मेरी वाणी, तुम तो क्रौंच मिथुन को देखने वाली नहीं थी। तुमने तो कहा था कि तुम्हें इस समय उषा स्तवन करते हुए सरस्वती तट के ब्राह्मणों के कंठ में रहना होगा अथवा गंगा सरयू की वारी धारा में सूर्य को अर्घ देती हुई असंख्य प्रजाओं की प्रार्थना में अथवा गोदावरी कृष्णा के तट पर ध्यान योग में लीन मुनियों के मानस में तुम संचरण करोगी और तुम्हारे पग नुपुरों के द्वारा ध्यान तरंगायित होकर कविता बन जाएगा। यहाँ आकर मामूली पंछी प्रणय जैसे भदेश ग्राम्य दृश्य को देखने की फुर्सत और अभिरुचि दोनों का तुम्हारे पास घोर अभाव था, परंतु मुझसे पहले ही आकर इस तगर की नन्ही डाल पर खिल गई और मुझसे ही कह रही हो बेमतलब जुट आया हूं। क्यों, तुमने ही तो कहा था मैं कोई नया छंद दूं जिसमें तुम आजन्म दुखी मर्त्य मानवों का काव्य रचोगे। ठीक है, परंतु इस बार छंद और काव्य दोनों मानवी ही रहेंगे, मनुष्य के द्वारा मनुष्य की कीर्ति का ज्ञान। तुम देखोगे कि तुम्हारी अपौरुषेय कविता से मानवी कविता सुंदरतर ही होगी। देवी क्रियाशील तो तुम ही हो, देवी क्रियाशक्ति तो तुम ही हो। तुम काठ पत्थर में प्रवेश कर जाओ तो वह भी एक प्रजापति एक सृष्टा बन जाएगा। मनुष्य की तो कोई बात ही नहीं, मनुष्य तो देवता का ही मर्त्य संस्करण है, सुवासित पवन के भीतर से उतर आया। देखो तब जल्दी करो, वह जो सामने व्याध आ रहा है, काला कुरूप, माथे पर मोर पंखों से कटी में शंख कौड़ियों की माला पहने, जल्दी जाओ उस निषाद पुरुष में प्रवेश कर जाओ। और मैं प्रविष्ट हो रही हूँ उस गायत्री जपते हुए ब्राह्मण के कंठ में, मैंने जानबूझकर उसमें उच्चाटन स्थापित किया है, उसका मंत्र विकल है। इस विकलता के मध्य में करुणा का प्रवेश कराकर नए ढंग का श्लोक उस ब्राह्मण के कंठ से उत्पन्न करूंगी। जाओ जाओ जल्दी करो, अन्यथा निषाद आगे बढ़ जाएगा और उसकी नजर ब्राह्मण देवता पर पड़ जाएगी। तब वह भक्ति से प्रणाम करके दूर अपसरित हो जाएगा। जाओ तुम लोभ बनकर उसकी इच्छा में उचित हो, तुम निर्ममता बनकर उसके हृदय में प्रतिष्ठित हो जाओ, तुम उत्तेजना बनकर उसके स्नायु और भुजाओं में प्रवेश करो, तुम वेग बनकर उसके धूर्त बाण में धावमान हो जाओ, जिससे वह काम मोहित क्रोध के जोड़े में से एक को विद्ध कर दे और निर्जीव लोथ फड़फड़ाती हुई सामने जमीन पर आ गिरे। और तब मैं ब्राह्मण के कंठ में प्रवेश करके क्रोध और करुणा विमिश्रित एक श्लोक उच्चारित कर दूंगी, भविष्य की कविता का नया छंद। फिर कुछ देर बाद तुम ठाट बाट से अपने हंस यान पर सवार होकर जाना, चाहे प्रत्यक्ष अथवा उसके ध्यान लोक में अवतरण करके, और माथे में जो कुछ भाव विभाव या ज्वार प्रलाप हो जो तुम्हें कल रात से विकल किए है उसे बताना, अपना माथा हल्का कर लेना। मैं उसे पर्याप्त बुद्धि दूंगी जिससे तुम्हारी सुनाई बात को वह काव्य में परिवर्तित कर सके। अरे हाँ, एक बात और सुन लो, तुम्हारे इस नित्य किशोर और भुवन मोहन रूप से काम नहीं चलेगा, चेहरे पर बुढ़ापे का रंग मल लेना, अन्यथा तुम्हें कोई विधाता के रूप में पहचानेगा ही नहीं। मर्त्यलोक जो ठहरा वहाँ प्रत्येक चिरकालीन प्राचीन या आदिकार्थ जीर्ण या बूढ़ा ही लगाया जाता है। मनुज बहुत दिन दृष्टा ही रहा, अब उसे स्वयं कवि होने दो, स्वयं दृष्टा होने का सुख लेने दो। समझ तो गया देवी, पर ईर्ष्या हो रही है उस अधेड़ ब्राह्मण से। मैंने चारों दिशाओं में जिधर भी तुम मान पूर्वक मुख मोड़ लेती हो, तुम्हें देखने के लिए चार चार चेहरे धारण कर लिए, आठ आठ आंखें बना ली, तुम्हारी मनोहार के लिए चार मुखों की झंझट उठाई, और तुम मेरी भूमिका में उतरोगी उस मर्त ब्राह्मण को, तुम मेरी भूमिका में उतारोगी उस मर्त ब्राह्मण को, औरों की मधुमती भूमिका में मान मनोहार का आस्वादन लेने की इच्छा तुम्हें भी हो रही है। यही अच्छा यही मान लो, पर क्या स्मरण नहीं आता, पहचानते नहीं यह ब्राह्मण है कौन? यह तुम्हारा ही तो भूपतित अंश है, प्रत्येक कवि ही अब साभ्रष्ट ब्रह्मा होगा, और उसमें मैं स्थित होऊंगी शब्द बनकर और तुम रहोगे अर्थ बनकर। हम और तुम अपनी काल संध्या के आगमन तक इस तरह सहस्त्र सहस्त्र रूप धारण कर खेला करेंगे। यह कहते वह तगर का फूल धरती पर झड़ पड़ा और वह मलय पवन भी सरसराता हुआ एक ओर निकल गया। तत्पश्चात क्या हुआ इसे सभी जानते हैं। शोक से आर्त और कुपित होकर ब्राह्मण ने उक्त निषाद को शाप दे डाला, मां निषाद प्रतिष्ठां त्वम् इत्यादि कहकर। अवश्य निषाद से उस ब्राह्मण का तात्पर्य किसी जाति या नस्ल से नहीं बल्कि सील और आचरण से था। ब्राह्मणों की पुरानी भाषा में निषाद और आर्य शब्द जातिवाचक नहीं सीलवाचक थे, यद्यपि बाद के ब्राह्मणों ने स्वार्थवश सील की बात को पृष्ठभूमि में कर दिया। उस ब्राह्मण का धिक्कार वाक्य या तो उस निषाद विशेष के लिए व्यक्तिगत तौर पर था अथवा उन सबके लिए था जो इस प्रकार के क्रूर कर्म भविष्य में करेंगे। यूं इस घटना से मर्माहत तो सभी हुए थे, निसर्ग के हृदय में घाव हो गया था, नदी की रक्त स्नात धारा असुचि होकर ठिठक गई थी, मरुत विकल प्राण हो उठे थे, क्रूर स्वापद क्रूर स्वापदों ने शर्म से माथा झुका लिया था और विस्तर सर्प उदास होकर अपनी बाम्बियों में लौट गए थे। इस तरह अनुभव तो सभी ने किया, परंतु छंद निकला केवल मानव कंठ से, क्योंकि शब्द वैखरी का आशीर्वाद मात्र मनुष्य को ही प्राप्त है। बेचारा निषाद उस ब्राह्मण के पैरों पर छपक छपक कर गिर रहा था। महाराजा, बड़ी गलती हुई, क्षमा करो। मैं कल सात माध चाक और कृष्ण सार मांस दक्षिणा में दे जाऊंगा। मान जाओ ब्राह्मण देवता, पर ब्राह्मण अडिग रहा। काम मोहित दो जीवों का वध करने पर भी तुम प्रिय और श्रेय के अधिकारी रहोगे, यह असंभव है। बड़ी अनुनय विनय करने पर भी जब ब्राह्मण देवता नहीं माने तो निषाद ने तमक कर कहा, अथवा निषाद के अंदर नियति के कर्ता धर्ता ब्रह्मा ही बोले, ए पंडित महाराज, क्यों कुपित होते हो? जरा मुझे पहचानो कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ इतिहास। नियति के निर्देश पर मरना, नियति के निर्देश पर मारना ही मेरा काम है। यह कहकर निषाद खड़ा हो गया। उसकी वपु विस्तीर्ण होने लगी और लगा कि उसका माथा आसमान ठेक जाएगा। पर वह ब्राह्मण भी बड़ा ही दबंग निकला। उसकी तर्जनी उसी तरह उठी रही और वह भी निर्भय बोला, अथवा यो कहो कि उसके भीतर की सरस्वती बोली तो तुम भी सुन लो। यदि तुम इतिहास हो तो मैं हूँ काव्य। हम और तुम दोनों सतीर्थ हैं, परंतु जब तुम विवेक भ्रष्ट होते हो, राजलिप्सा के नाम पर हजार हजार मुंडपात करवाते हो, अर्थलोभ के कारण धरित्री का सारा दान सारा धृत मधु चाबियों से ऐंठ कर ताले में बंद कर लेते हो, शुद्ध काम लालसा को सभ्यता संस्कृति कहकर चलाने लगते हो, तो मेरी तर्जनी बिना उठे मानती नहीं। मेरा कंठ एक क्रुद्ध श्लोक बनाने को विकल हो जाता है। तुमने अपना बल प्रदर्शित कर दिया, अपना आकाशव्यापी विस्तार दिखाकर, अब मेरा भी बल देखो। वह क्षुद्र चिड़िया जिसे तुमने मार डाला है अवतरित हो रही है पुनः सरस्वती का नया वाहन बनकर, चिरकाल व्यापी छंद बनकर, काव्य बनकर, मनुष्य की गरिमा का रथ बनकर। देखो, वही मरी चिड़िया पुनः अवतरित हो रही है। यह मरी चिड़िया मनुष्य के सच्चित्त और आनंद का बोध देगी। यह मरी चिड़िया मनुष्य को सच्चित्त और आनंद का बोध देगी अपने नए छादंश रूपांतर में। और तुम अपने धनुष बाण, तुम्हारी चाबुकें, तुम्हारी तिजोरी में बंद सोने चांदी करुण स्वर में रोने लगेंगे। इस मरी चिड़िया की नई महिमा को देख मैंने देखा कि इतिहास अपने संपूर्ण अर्थशास्त्र, राजनीति, कूटनीति के बावजूद मारे शर्म के पुनः सिमट कर छोटा हो गया। पुनः उसके चेहरे का रंग काला हो गया और उधर आसमान के नील ऊर्ध्व के उत्तर काल की सरस्वती का वाहन नीचे उतरा। वही क्रोंच, वैसी ही देह, वही डैने, वही चंचू, परंतु इस बार रंग शुद्धता श्वेत था। गोया मृत्यु की नदी में स्नान करके उसका काम लोभी मरकत वर्ण धुल गया हो और वह निरंजन श्वेत बन उठा हो, मुझे लगा कि मैं 20वीं सदी का एक मामूली मृदंग वादक अपनी नीरस गद्य मृदंग को लेकर काल नदी के कई हजार वर्ष पुराने घाट पर पहुंच गया हूँ और इस वांग्मय अगोचर संबंध को सुन रहा हूँ। वह मरा हुआ पंछी उत्तर काव्य का वाहन बनकर लौट आया और इस प्रकार बोला, बंधु, मैं लौट आया हूँ शब्द बनकर, भाव बनकर। मैं अपने कल कुंजन द्वारा तुम्हें अंदर असंख्य वर्षा शरद और असंख्य वसंतों की रचना करता हूँ। मैं कैसे वहां पहुंचा, क्यों वहां पहुंचा, इस अद्भुत दृष्टिकल्प का रहस्य सूत्र सबको बताने की बात नहीं। तब तक वह ब्राह्मण माथे पर ओमकार धारण करके प्रजापति का रूप ले चुका था, जिसके भीतर स्वलक्षणा प्रादुर्भूत सरस्वती जाग उठी थी।